राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। विष्णुपाद परमहंस परिवराज काचार्य अष्टो तत्त श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्त प्रदान स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिवराज काचार्य अष्टो तत्त श्री श्रीमद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की नमाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की द्वारका धाम की गंगा माई यमुना माई की तुलसी देवी भक्ति देवी की ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड लोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड लोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड लोटीज ఆల్ గురి ఆల్ గురి ఆల్ గురి టు శ్రీ గురు అండ్ గౌరంగ శీల ప్రభాత్ కి శీల ప్రభాత్ బుక్ మ్యారథాన్ కి జయ హరే కృష్ణ తో హమ్ ఆజ్ పఢ్ రహే భగవద్గీత యథారూప్ సే అధ్యాయ దూసరా श्लोक संख्या है 18 तो मेरे पीछे दोहराइएगा। अंतवंत में देहा नित नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिना प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत अन्तवन्ताय मे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिना प्रमेयस्य तस्मा युद्धस्य भारत अन्तवन्तय मे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणा अनाशिना प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। अन्तवन्ताय मे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। अन्तवन्ताय मे देहा युक्ता शरीररा तस्मादस्य भारत। अन्तवन्ताय मे देहा तस्मात् युक्तस्य भारत। शब्दार्थ अन्तवन्ता नाशवान इमे ये सब देहा भौतिक शरीर नित्यस्य नित्य स्वरूप उक्ता कहे जाते हैं शरीरिणा देहधारी जीव का अनाशिना कभी नाश ना होने वाला अप्रमेयस्य ना मापा जा सकने योग्य तस्मात् अतः युद्धस्य युद्ध करो भारत हे भरतवंशी। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तात्पर्य। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी, यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता। मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता, अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही ये शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददान्ति स्वापदान्तिकं। वन्देऽं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सार्गजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारुणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने अभी दूसरा अध्याय में 18वां श्लोक पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था जो प्रथम अध्याय से कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य का निरीक्षण जहाँ पे शुरुआत में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि युद्ध स्थल पे क्या हो रहा है, और वो बताते हैं किस तरह से दुर्योधन ने अपने सेनापति से वार्ता की और किस तरह से भीष्म पितामह ने संघनाद किया, उसके बाद पांडवों ने किया, और कैसे एक इससे उत्साह बढ़ा और विजय की सूचना रहती है। उसके बाद अर्जुन इच्छा व्यक्त करते हैं भगवान से कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन युद्ध के मैदान में लड़ाई करने आए हैं उनसे, क्योंकि उनके परिवारजन ही रहते हैं। तो भगवान उनको दोनों सेनाओं के मध्य में लेके जाते हैं, खासकर जो उनके प्रिय थे गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के, कि देखो। और उस समय अर्जुन ने युद्ध न करने के बहुत सारे कारण बताए ना, कि किस तरह से एक भक्त के होने के कारण उनके अंदर करुणा का भाव आया, दया आया, कि युद्ध करेंगे तो इतने सारे लोग मारे जाएंगे। और उसके बाद बोलते हैं कि अगर वो परिवार वाले या जिनके खिलाफ युद्ध कर रहे हैं तो वो मर गए तो फिर जो भोग है वो कैसे करेंगे इसी तरह, और इतने सारे जब लोग मरेंगे तो पाप होगा। इसके साथ साथ जो बड़े बुजुर्ग परिवार के नष्ट हो जाएंगे तो परिवार में परिवार का भी नाश हो जाएगा ना, किस तरह से संतानें जो उत्पन्न होंगी वो उचित नहीं उत्पन्न होंगी। और उसके बाद जो बताते हैं संजय धृतराष्ट्र को कि इस तरह से व्यक्त करके अर्जुन ने अपना धनुष रख दिया और बोला कि मैं युद्ध नहीं कर सकता है ना। और लेकिन साथ में बताते हैं कि किस तरह से वहाँ पे भगवान उपस्थित हैं, और दूसरे अध्याय शुरू में और रीजन देते हैं अर्जुन की गुरु का को कैसे वो कर सकते हैं, एक प्रकार से क्वेश्चन करते हैं भगवान से कि आप कर सकते हैं क्या। और तब इसके साथ ही साथ वो समर्पण करते हैं, और यहीं से मेन जो भगवद गीता का जैसे टर्निंग पॉइंट आता है ना, कि अभी तक जो वार्ता हो रही थी तो एक मित्र जैसा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर के एक गुरु और शिष्य का पोजीशन निर्धारित हुआ कि अर्जुन ने स्वयं ही भगवान के प्रति शरणागत हुआ और बताया कि मैं अभी निर्णय नहीं लेकर पा रहा हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ, तो मैं पूरी तरह से आप पर निर्भर हो रहा हूँ ना, वो बोलते हैं। तो उसके बाद भगवान आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करते हैं ना, जो कि वास्तविक ज्ञान है, और उसी के द्वारा भगवत तत्व का भी इस पूरे अध्याय में सेकेंड अध्याय में बताएंगे। और जब आत्म तत्व और भगवत तत्व प्राप्त हो जाएगा तभी उसके बीच जो महत्वपूर्ण है हमारे सभी शास्त्रों में और सभी आचार्यों ने जो महत्व दिया है कि इन दोनों के प्रति संबंध, कि जीव और भगवान के प्रति जो संबंध है वो ही बहुत महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में ही देखेंगे तो बोलते हैं कि जो 75% रहते हैं तो श्लोक या उसमें सार है तो उस पर भगवान का संबंध के बारे में बताया गया है, कि जब अगर संबंध जब निश्चित हो जाएगा तभी आगे अभिधेय या प्रयोजन होगा, कि उसका प्रोसेस कैसे करते हैं और उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, तब उसकी ओर बढ़ेंगे। तो अभी तक जैसे भगवान आत्म तत्व के बारे में पिछले लगभग 11वें श्लोक से शुरू करते हैं ना, कि किस तरह से शरीर और आत्मा में अंतर है ना, कि तुम शाश्वत रूप से थे ये सभी राजा भी शाश्वत रूप से थे और हम भी थे। उसके बाद किस तरह से जो आत्मा है शरीर को चेंज करता है, कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न हुए थे, कि जो शरीर है बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक चेंज होता है, लेकिन जो धीर व्यक्ति है वो इससे घबराता नहीं या मोह को प्राप्त नहीं होता है। और आत्मा के बारे में ही बताते हैं कि ये किस तरह से इसमें किसी कालक्रम का, सर्दी गर्मी का, ऋतुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आत्मतत्व है और उसी के आधार पे बताते हैं कि किस तरह से वो समान ऐसा जो ज्ञान प्राप्त कर लेगा आत्मा का, तो वो सम हो जाएगा, सुख कभी विचलित नहीं होगा सुख तथा दुख में। और इसके पिछले वाले श्लोक में 17वें में बताते हैं कि आत्मा के बारे में ही, कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो देखते हैं भगवान शुरुआत से ही बताते हैं कि किस तरह से आत्मा और शरीर अलग है। और जो प्रमुख समस्या है आज पूरे विश्व में या भौतिक संसार में, तो वही है, क्योंकि उसको जीव को आत्म तत्व नहीं है। उसके कारण क्या होता है, वो भौतिक संसार में जन्म लेते ही मोह को प्राप्त हो जाता है, मतलब मोहित हो जाता है, कि उसको पता होना चाहिए कि जैसे मनुष्य में और दूसरे जीवों में, पशुओं में क्या अंतर होता है। हम लोगों ने शायद स्कूल में लिखते थे ऐसे, या निबंध लिखते थे मनुष्य जीवन ना, उस पर कई बार ये जरूर लिखते थे कि आहार निद्रा भय मैथुन आशा ना, कि मनुष्य और जानवर में अंतर होता है, कि ये समानता होती है प्रमुख, आहार खाना, निद्रा सोना, भय सुरक्षा करना, मैथुन क्रिया आदमी संतान उत्पन्न, ये मतलब मनुष्य में और जानवर में कॉमन होती है। लेकिन जो मनुष्य है वो आत्मा के बारे में जान सकता है, जिसका शरीर, इस शरीर के द्वारा आत्मज्ञान किया जा सकता है और भगवत ज्ञान किया जा सकता है, यही उससे अंतर करता है। वो समझ सकता है कि जन्म मृत्यु जरा ये व्याधियां हैं, परेशानियां हैं, और उसका समाधान करने के लिए प्रयास कर सकता है, नहीं तो वो पशु के समान है। तो उसी का ज्ञान यहाँ पे देते हैं, नहीं तो भौतिक संसार में आज का जैसे कोई भी शिक्षा प्रणाली है तो इतना अंधकार है, इतनी अज्ञानता है और जन्मों जन्मों की अज्ञानता है, लेकिन ये ज्ञान नहीं दिया जाता है। एक भक्त बता रहे थे कि परम पूज्य जयपताका महाराज बंगाल में जब शुरुआत में प्रचार करते थे, तो एक स्कूल, एक प्रिंटर में कुछ प्रिंटिंग करवाने के लिए जैसे जाते हैं भक्त लोग, गए थे तो वहाँ एक अध्यापक थे, तो क्वेश्चन पेपर स्कूल में जो होता है कक्षा चौथी पांचवी क्लास के बच्चों का, तो प्रिंट करा रहे थे। जब वो करा रहे थे तो महाराज भी देखे वो क्वेश्चन पेपर पढ़े, तो उस पर एक क्वेश्चन था कि आप कौन हैं। तो महाराज ने उन जो अध्यापक थे उनसे पूछा कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या लिखा जाएगा ना, तो अध्यापक ने बताया लिखा जाएगा कि मैं ये हूँ, अपना नाम, मेरा ये पता है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, इस क्लास में पढ़ता हूँ ना, ऐसा करके। तो उसको पूरे, मतलब अगर 5 नंबर का है तो 5 ये पॉइंट लिखेगा, अपना नाम लिखेगा, पता लिखेगा, ऐसा करके, तो उसको 5 नंबर मिल जाएगा ना। और महाराज ने बोला अगर वो लिखे कि मैं आत्मा हूँ ना और कृष्ण का दास हूँ तो कितना नंबर मिलेगा, तो उन्होंने बोला 0 मिलेगा ना। हालांकि उत्तर ये सही है कि वो आत्मा है और जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास ही है, सही आंसर यही है उसका, लेकिन तब उसको 0 मिलता है। और जब गलत आंसर लिख रहा है, मतलब शिक्षा जो सिलेबस है उस पर वही पढ़ाया गया है ना, जबकि हम देखेंगे कोई जो आध्यात्मिक में सबसे पहला शिक्षा यही दिया जाता है कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। और हालांकि बहुत सारे आध्यात्मिक संस्था भी ना, एक वक्त बता रहे थे कि कोई गुरु थे, किसी परिवार में बहुत बड़ा फंक्शन था, उस पे वो गए थे, तो प्रोग्राम वगैरह किए उनका, सभी लोगों ने उनका पूजा वगैरह भी किया और आशीर्वाद भी लिया ना, और जो भी क्रियाएं हुई वो हुआ। लेकिन वो गुरु करते थे अपना तपस्या करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, वो करते थे, लेकिन अपने जो शिष्य थे या उनको ये ज्ञान नहीं दिए कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। और ये जैसे प्रभुपाद जी इस पर लिखते हैं इस तात्पर्य पे कि शरीर नाशवान है, पहला शब्द यही लिखते हैं कि भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है ना, और ये कभी भी नाश हो सकता है, तो इसका ज्ञान नहीं दिए। जबकि हम देखेंगे इस्कॉन में कोई पहले दिन ही आता है ना, तो उसको सबसे पहले ज्ञान यही दिया जाता है ना कि आप भगवान के दास हो या आत्मा हो, ये ज्ञान दिया जाता है, ये शरीर नहीं हो, ये गलत आइडेंटिफिकेशन है। तो मतलब जो वास्तविक सत्व है कि व्यक्ति कौन है, उसका परिचय दिया जाता है भगवद्गीता में, भागवतम में ना। तो वही भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जो ये शरीर कैसा है, अंत वंत, मतलब इसका ये निश्चित है कि इसका अंत हो जाएगा। और पिछले वाले श्लोक में बताते हैं कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो इस आधार पे मतलब दो पॉइंट हो गए कि एक तो ये शरीर नष्ट होना ही है, मतलब अर्जुन सोच रहे हैं लड़ाई नहीं करें या ना करें, तो करें या ना करें उनका जो परिवारजनों का, गुरुजनों का, पितामह का शरीर वो नष्ट होना ही है। और दूसरा है वो अगर समझता है आत्मा है वो शरीर नहीं है, तो आत्मा का कभी नष्ट नहीं होना है, तो लड़ाई करे उनको मारे तो भी उनको नष्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पे ये भगवान बता रहे हैं, और उसके बाद बता रहे हैं कि किस तरह से ये आत्मा जो है अविनाशी है ना, कि नष्ट नहीं किया जा सकता है, और आत्मा के कारण ही जो ये शरीर है इसमें पोषण होता है ना। प्रभा जी एग्जाम्पल देते हैं, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, सारा ब्रह्मांड का पोषण किससे होता है, सूर्य के प्रकाश से ना। जो भी शक्ति है, जो एनर्जी है, कोई भी एनर्जी हो, तो अल्टीमेटली जिस जो सोर्स है वो सूर्य है ना। हम जितने भी इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, अलग अलग उस सोलर एनर्जी को ही कन्वर्ट के बाकी एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है, तो सोर्स वही है, और उसी से पूरे ब्रह्मांड का, जीवों का है, पौधों का है, तो सभी का पोषण हो रहा है। उसी तरह जब आत्मा है शरीर पे, तभी उसका पोषण होता है। अगर आत्मा नहीं है तो प्रभा जी लिखते हैं, जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, सड़ने लगता है, और आत्मा रहता है तब सड़ता है या नहीं सड़ता है? तब भी सड़ता है एक्चुअली, लेकिन उस समय पोषण भी होता है। हम देखेंगे अगर हम जैसे कई दिन नहाए नहीं तो बदबू आने लगती है हमारे शरीर से, नहीं ना? अगर हम रोज दांत वगैरह क्लीनिंग नहीं करेंगे तो बदबू आएगा, मतलब वो सड़न से ही आता है ना। बोलते भी हैं कि उस तरह जीवित विज्ञान में भी कि कुछ वर्षों बाद हमारे शरीर का प्रत्येक सेल खत्म हो जाता है, नया आ जाता है, तो एक प्रकार से उसमें सड़न हुआ है ना तभी, लेकिन उसमें पोषण नहीं होता है। शरीर केवल पोषण नहीं कर सकता है, उसके लिए आत्मा का रहना जरूरी है। उसके बाद बताते हैं कि अप्रमेय, मतलब ना मापा जा सकने योग्य। आत्मा का गुण क्या है कि उसको मापा नहीं जा सकता है। कई लोग जो नास्तिक रहते हैं, भगवान पे विश्वास नहीं करते, वो बोलते हैं हमको भगवान दिखाओ, हम कैसे विश्वास करें भगवान किधर हैं? तो क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं तो अपूर्ण हैं, जैसे आँखें हैं भौतिक हैं ना, तो उनसे देखा नहीं जा सकता है परम पुरुष को या पवित्र चीज को। उसके लिए उसको शुद्ध करना पड़ेगा। और क्यों नहीं ये देखा जा सकता है? क्योंकि जो भौतिक चीज है, जैसे इसके पहले श्लोक में बताते हैं कि आत्मा का कितना वो है कि केसा अग्र सत्भागस्य सतांश स दृशात्मका जीव सूक्ष्म स्वरूपो अयम संख्यातीतो ही चित्कड़ा। कि आत्मा का इतना इतना छोटा है कि आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है ना। इसमें भी बता रहे थे प्रभुपाद जी कि अगर एक बाल का अग्र भाग है उसका 100 टुकड़े कर दिए जाएं और उसके एक टुकड़े को भी दोबारा से 100 टुकड़े कर दिए जाएं, उतना बड़ा आत्मा का आकार है। तो हमारे पास वो यंत्र या साधन नहीं है कि उसको मापा जा सकता है, तो हम देख कैसे सकते हैं इन आँखों से ना? वैज्ञानिक तो यहाँ तक जो सिंपल पॉइंट रहता है तो उसको भी बोल देते हैं कि ना कि उसका लंबाई चौड़ाई नहीं है ना, जो पॉइंट या पॉइंट रहता है डॉट, तो उसका लंबाई चौड़ाई नहीं रहता, लाइन का ही रहता है लंबाई है ऐसा। लेकिन डॉट का भी कुछ रहता है, उसका लंबाई चौड़ाई नहीं होगा तो डॉट ही नहीं होगा ना। तो ये तो ग्रॉस हो गया ना, उसके आत्मा तो बहुत सटल है, और फिर परमात्मा जो भगवान को देखें तो वो और भी उनसे सटल है, उसको देख पाना तो ज़्यादा ही मुश्किल है। इसके अलावा शाश्वत है, तो जैसे बताया पिछले श्लोकों में भी कि ये आत्मा जो कभी हमेशा से है, कभी नष्ट नहीं होता और कोई भी उसको नष्ट नहीं कर सकता। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं या समझ सकते हैं, इसके लिए भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राम इंद्रिया। जो इंद्रियां हैं हमारी अपूर्ण हैं और ब्लंट हैं, तो उनको हम इस योग कैसे बना सकते हैं कि हम भगवान को समझ सकें, भगवान को देख सकें या अपने को जान सकें और भगवान के संबंध को जान सकें? तो उसका प्रोसेस है या क्रिया है कि भगवान के नाम के द्वारा, श्री कृष्ण नाम आदि, आदमी आ जाता है, जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु उष्णम जो नौ विधियां हैं भक्ति की, उन विधियों का पालन करेंगे तो क्या होगा उससे। जैसे हम चैतन्य शिष्टाष्टकम पढ़ते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा तावाग्नि निर्वापनम, कि हमारा जो चेतना है उसमें अनेक अनेक जन्मों से गंदगी की लेयर जमती गई है तो वो ख़त्म हो गया पूरा। जैसे मिरर होता है, शीशा होता है, उस पर धूल जमती रहेगी तो हम उस पर देख नहीं सकते अपना चेहरा। उसी तरह जो हमारी चेतना है उसमें इतना मल या कलमस काम क्रोध लोभ मोह की परतें इतना जम गई हैं कि हमारे जो देख नहीं सकते कि आत्मा का पवित्रता, तो उसको इस प्रोसेस के द्वारा सही किया जा सकता है कि भगवान के नाम के सुनने से और उसके जप के द्वारा उस जो गंदगी है उसको क्लीन किया जा सकता है। और कलयुग में वैसे भी लोगों के बोला गया है मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य, कि उनका जो बुद्धि है मंद है, उनका भाग्य मंद है, उनकी उम्र भी है या जीवन काल भी है वो भी छोटा है। वैसे बोला गया है कि 100 साल है कलयुग में उम्र, लेकिन एवरेज देखा जाए तो 50 से नीचे ही रहेगा ना। आजकल प्रभात जी इसमें बता भी रहे हैं कि यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी, कि ये तुरंत ना, देखते हैं कि कितने युवक लोग होते हैं लेकिन कुछ भी, जैसे इस समय कोरोना वायरस जैसे बीमारी चल रही है ना, अलग अलग दूसरी चीज़ें कष्ट आते रहते हैं, बहुत सारे दुख आते रहते हैं, पीड़ाएं आती रहती हैं, अकाल होते हैं, गर्मी होता है ना, ठंडक होती है, जैसे बहुत सारे प्रदेशों में अलग अलग जगह हो रहा है, तो इससे भी लोगों को पता नहीं है कभी उसका मृत्यु हो जाए। तो ये कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस मनुष्य जीवन को समझा जाए और जो वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक सत्व है, उसको पहचान के उसके अनुसार काम किए जाएं, कि पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कर्ण अपने कर्म के अनुसार ही ये शरीर धारण करते हैं। ये लोगों को पता नहीं है कि उनको जो शरीर मिलता है वो किस आधार पे मिलता है। तो जब जिस प्रकार से आत्मा इस शरीर के द्वारा कार्य करता है, यह भी बोला जा सकता है अभी शरीर नष्ट होने वाला है तो उसकी उपयोगिता क्या है। तो शरीर को बताया गया है एक नाव के जैसा है ना, कि जिस तरह से हम कोई नदी समुद्र को पार करते हैं नाव के सहायता से, अगर वो डूब गया नाव तो नहीं पार कर किया जा सकता है। तो उसी तरह शरीर की देखभाल इसीलिए करना है ताकि उसके द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकें, भगवान का नाम जप सकें और भगवद गीता को पढ़ सकें और समझ सकें अपने और भगवान के संबंध को, तभी इस शरीर का सार्थकता है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। और जब रियली में धार्मिक नियमों का पालन करेंगे तो जो जीवात्मा का असली स्वभाव है सच्चित आनंद, जैसे अभी बताया यहाँ पे सच्चित के बारे में, और तभी उसको वास्तविक में आनंद प्राप्त हो सकता है। आज हर जगह सभी कोई आनंद की खोज कर रहा है ना, इसीलिए अलग अलग चीज़ें आविष्कार कर रहे हैं या बना रहे हैं कि इससे हो सकता है उसको आनंद प्राप्त हो जाए, लेकिन वो मिलता नहीं है ना, उससे और गलत होता है उससे और दुख होता है। तो प्रभात जी बोलते हैं ये एक प्रकार से माया का प्रभाव है कि माया अलग अलग वो दिखाती है कि शायद इससे प्रसन्नता हो जाए। एक वक्त बता रहे थे कि परम पूज्य राधानाथ महाराज एक समुद्र के किनारे खड़े थे तो उन्होंने देखा कि एक बाज आता है ऊपर से और वो पानी में झपट्टा मारता है और तुरंत ऊपर चला जाता है और अपने पंजे में मछली को पकड़ के लेके जा रहा होता है। तो उस समय बताते हैं कि जीव भी उस पर मछलियाँ बहुत रहती हैं उस समुद्र में, तो कुछ मछलियाँ रहती हैं कि पानी के अंदर रहेंगी तो उसको बाज नहीं पकड़ सकता, लेकिन जो पानी से उछलेगी ना, जो उछलेगी उसी को वो बाज ध्यान लगा के रखता है कि कभी कोई उछलेगा और तभी वो लेके जाएगा। तो उसी तरह ये माया का प्रभाव है कि अगर भगवान की शरणागत नहीं होता कोई तो उसको अलग अलग प्रकार से प्रलोभन देता है और उस पर फंसा के रखता है और उससे क्या होता है, बंधन होता है और वो बंधन कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है, जिससे इतना हो जाता है कि उसको उसमें निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये थोड़े समय का बंधन नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का बंधन है। और वो क्यों है, सिर्फ अज्ञानता के कारण, क्योंकि जीव ने अज्ञानतावश भगवान से अलग हुआ और स्वतंत्र रूप से अपनी भोग करना चाहा या अपना इच्छा को जागृत किया, तो वो जो अज्ञानता के कारण ही इस भौतिक संसार में आया, जो कि तमस जगह है ना, हम जैसे शुरू में बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ना, कि ये तिमिर अंधकार है और गुरु वैष्णव ही इस अंधकार से निकाल सकते हैं, कि वो जेहल के समान है। तो जेहल में कौन सा व्यक्ति जाता है, जो गवर्नमेंट के नियम को तोड़ता है ना। गवर्नमेंट ने नियम बनाए हैं, वो पहले से बना के रखते हैं, जैसे अभी ट्रेन चालू होता है तो उससे पहले ही उस पर लिख के रखते हैं ना कि विदाउट टिकट यात्रा नहीं करें ना, अभी जाएंगे तो सभी बस में लिखा रहता है, मराठी में लिखा रहता है कि मास्क नहीं है तो नो एंट्री ना, बहुत सारे दुकान में भी लिखा रहता है कि नो मास्क नो एंट्री। तो अभी वो नियम बना के रखा है ना, अभी बाहर निकलोगे तो फाइन भी है ना, शायद 500 रुपये ऐसा फाइन भी लेते हैं। अभी उसको कोई नहीं मानेगा, अपने अनुसार चलेगा तो उसको फाइन लगेगा, दंडित किया जाएगा। उसी तरह भगवान ने भी नियम हैं यूनिवर्सल गवर्नमेंट में ना, और वो भी नियम पहले से एक प्रकार से दिए गए हैं शास्त्रों के माध्यम से अलग अलग, और विशेष रूप से कंडेंस रूप में देखा जाए तो भगवद गीता के रूप में पूरा मैनुअल दिया गया है कि आपको इसको फॉलो करना है और इसको आप अगर सही से अपनाएंगे तो जो तुम्हारा अज्ञानता है ना, जिसका पर्दा लगातार मोटा हो गया है, तो उसको अगर रेगुलर भगवद गीता आप पढ़ेंगे, भले एक ही श्लोक तात्पर्य सहित पढ़ें ना, तो भी उससे वो ज्ञान आएगा और वो अज्ञान हटता जाएगा। और उसके कारण क्या होगा कि जो हम नियम नहीं पालन कर रहे हैं, हम उनको नियम के बारे में जानेंगे तो उसके प्रति पालन करेंगे, अगर जानेंगे ही नहीं तो पालन भी नहीं करेंगे, तभी वो अज्ञानता दूर होगी। एक प्रकार से जिस प्रकार से अज्ञानता से गलत काम करते हैं ना और भवबंधन में पड़ते हैं, तो उसके लिए ये जो शास्त्र है या भगवद गीता है, तो जैसे कि अभी कोरोना के लिए क्या चल रहा है, वैक्सीन की ज़रूरत है ना, कि अगर वैक्सीन मिल जाए तो वो स्वतंत्र हो सकता है, बंधन से मुक्त हो सकता है, मास्क से या बाकी जो नियम कानून है उनसे फ्री हो सकता है। तो उसी तरह अगर भगवान, ये वैक्सीन है भगवद गीता, कि उसको पढ़ेगा, उसको अपनाएगा, तो जो भौतिक बंधन है तो उससे छुटकारा प्राप्त कर सकता है अच्छी तरह से। और बहुत सारे हम देख सकते हैं अपने संस्था के हिस्ट्री में ना, कि बहुत जगह ऐसे हुए हैं कि लोग गलत गलत काम कर रहे थे, लेकिन जब भक्तों के संपर्क में आए, भगवद गीता के संपर्क में आए, तो उनका जीवन परिवर्तित हो गया ना। कल ही सुन रहा था, एक प्रभु जी बता रहे थे कि कोई व्यक्ति था, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि वो अपना सुसाइड करना चाहता था ना। उन्होंने दो केस बताया था, एक घर का भी बताया था कि एक घर में था, उसने रस्सी बांध के रखा था और वो उस पर लटकने जा रहा था, आत्महत्या करने जा रहा था। तभी एक भक्त है, भगवत गीता लेकर के खटखटा रहा था, एक बार खटखटाया दरवाजा निकला, दोबारा खटखटाया नहीं खोला, तिबारा भी वो खटखटाया जा रहा था। तो उसने सोचा चलो अंतिम बार एक कोई तो खटखटा रहा है, उससे मिल लिया जाए ना, उससे शायद कम ही लोग मिल रहे होंगे इसीलिए फ्रस्ट्रेट था। लेकिन जब वो भक्त मिला और उसको भगवत गीता के बारे में बताया, तुरंत ये जो वास्तविक ज्ञान है आत्मा का वो बताया, तो उसका उसने अपना जो डिसीजन लिया था आत्महत्या का परिवर्तित कर दिया और वो भगवत गीता पढ़ा और भक्त बन गया। इसी तरह दूसरा बता रहे थे कि एक कार में एक था एक व्यक्ति, उसने कार को पूरी तरह लॉक कर लिया था और कुछ तो ऐसा गैस था, जहरीली गैस, कि उसमें चालू कर दिया था जिससे आराम से उसको मतलब पता न चले और आराम से उसका सांस बंद हो जाए और वो ख़त्म हो जाए, इसका सलूशन कर लिया था। तो भक्त लोग कार में, गाड़ियों में, ट्रैक में वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो अभी वो देखा कि कोई तो है तो खटखटाया, मतलब कांच से दिख रहा था कोई है अंदर बैठा है दिख रहा था, लेकिन वो गैस भी काम, अंदर गैस का काम चल रहा था कि वो चालू रहेगा, बढ़ जाएगा गैस तो वो सांस लेना बंद हो जाएगा उसका और वो ख़त्म हो जाएगा ना। तो खटखटाया, गाड़ी खटखटाया, तो वो देखा कि कुछ तो है, वो लिए है, कुछ देना चाहता है। तो उसने भी ऐसे ही सोचा ना कि अंतिम बार देख लेते हैं, तो उसका भी यही हुआ ना। तो ये पावर है भगवद गीता में ना, तो इसीलिए इस्कॉन संस्था इस पूरे महीने में जैसे भगवद गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ताकि इस तरह से लोगों को अज्ञानता को दूर किया जा सके और ज्ञान में जो आएंगे तो अपने आप जो उनका प्राकृतिक स्वरूप है ना, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, उसके अनुसार जब एक्ट करेंगे तो अपने आप से वो प्रसन्न हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे और खुशी से अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर पाएंगे। तो सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे हमारे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो सभी लोग से निवेदन है कि जिनके पास भगवद गीता नहीं है तो हमारे मंदिर में जगह जगह पे भगवद गीता उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की, जगत गुरु शील प्रभात की, हरे कृष्णा।